તારીખ 25-2-1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 467 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 170
467 પત્ર અપૂર્ણ ભૂમિકામાં મળ્યો છે, પણ સારો છે. 3-4 લાખ નું પત્ર છે, અપૂર્ણ સ્થિતિમાં મળેલો છે. અનાદિકાલ સે વિપર્ય બુદ્ધિ હોને સે ઓર કિતની જ્ઞાની પુરુષ કી ચેષ્ટા અજ્ઞાની પુરુષ કે જૈસી હી દિખતી હોને સે
ફરક
નહી પડતા. જ્ઞાની પુરુષ કે વિષય મેં વિભ્રમ બુદ્ધિ હોતી હૈ. पत्र का विषय जो है वो ज्ञानी पुरुष की पहचान के विषय में है. पूरा का पुरुष अथवा जीव की ज्ञानी पुरुष प्रति यह चेष्टा का विकल्प आया करता है. क्या है कि ज्ञानी की जो चेष्टा माने प्रवृत्ति है वो बहुभाग ज्ञानी पुरुष जैसी ही होती है. क्यों कि जो कर्म प्रसंग है, कर्म उदय है, वो कर्म तो अज्ञान दशा में ही बंधे हुए थे, जिसका उदय ज्ञान दशा में आते हैं. इसलिए सामान्य मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है, सामान्य अज्ञानी मनुष्य की, वैसी प्रवृत्ति ज्ञानी पुरुष की दिखने में आती है. वो भाग किसी न किसी परिवार में जन्म होता है और वहाँ जो भी उदय अनुसार कार्य होते हैं वैसे ही कार्य में प्रवृत्ति होती रहती है. अज्ञानी जीव के अनादिकाल से विपर्य बुद्धि होने से, विपर्य बुद्धि मैंने क्या, इस सोचने के कार्य पद्धति में विपर्यास होना, विपरीतता होना.
जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम तो बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, बहुत अच्छी तरह से, पर विपर्यास बुद्धि का मापदंड क्या है?
विपर्यास बुद्धि का मापदंड वो है कि बाह्य परिणाम, उदय के बाह्य परिणाम और उदय के बाह्य परिस्थिति को मुख्य करना, तो उसमें विपर्यास होता है. ये जो पहचान में जो गलती होती है वो बाह्य दृष्टि के कारण से होती है. धर्म के क्षेत्र में बाह्य दृष्टि से बाह्य पदार्थ की मुख्यता रहती है. जैसे आप हर संप्रदाय में देखिए कि जो तप है, त्याग है, इसका महत्व ज्यादा है, मैं कहनी है. और जो क्षोभ है शास्त्र ज्ञान का, उसका भी महत्व बहुत आता है. तो ये सब बाह्य चीजें हैं। तो वहां लोग श्रद्धान्वित होते हैं, वहां लोग समर्पण करते हैं, ऐसा होता है। ज्ञानी है वो दिखावे में जाते नहीं कभी। पांचवें गुण स्थान से उसका भेष बदलता है, शुल्लक इलक होते हैं तब। उसके पहले उनका जो बाह्य वेश है वो भी जैसा परिवार में वो रहते हैं वैसे ही, जहाँ जो ट्रेडिशन है वैसे ही होते हैं। जैसे कृपालु देव थे तो एक वणिक परिवार में थे, तो वणिक जैसे ड्रेस पहनते थे, वैसा कारोबार करते थे, वैसा गृहस्थाश्रम था, सब कुछ सामान्य अज्ञानी जैसे को जैसा होता है वैसा ही होता था। उस दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, इनके पास जो धार्मिक विषय है वो विषय में वो वितरागता, पूर्ण वितरागता की उपाधेयता को बताएंगे। और खुद की प्रवृत्ति में पूर्ण वितरागता तो होती नहीं, इसलिए वो कभी उपदेशक के स्थान पे बैठ करके उपदेश नहीं करते थे। जो जिज्ञासु थे उनको मार्गदर्शन देते थे। क्यों? कि ज्ञानी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बात और हमारी प्रवृत्ति में अंतर है, और बाह्य दृष्टि तो अनादि से है। वो बाह्य दृष्टिकोण या विपरीत बुद्धि को एक ही बात है। तो जो बाह्य दृष्टिमान जीव है तो बाह्य दृष्टि से ही देखेंगे और शंका करेंगे, एक बोलते हैं कुछ चलते हैं और कुछ, कहीं मायाचार तो नहीं होता है, यानी वो बोलते हैं ऐसा करते क्यों नहीं। जैसा उपदेश देते हैं, जैसे वो बातें करते हैं, वैसा क्यों परिणमन नहीं करते हैं। तो उसमें विश्वास नहीं आता। शंका नहीं करते तो अविश्वास तो हो ही जाता है। ये जो अविश्वास होना, शंका होना, इसमें क्या है कि भक्ति के परिणाम तो रहेंगे नहीं, अभक्ति के परिणाम हो ही जाएंगे, तो उनको तो नुकसान होगा। सत्पुरुष अनंत बार मिले, ज्ञानी अनंत बार मिले, फिर भी नहीं पहचानने का कारण यही है। पर गोपाल देव ने तो अपने विषय में एक दो जगह लिखा है कि हमारी जो बाह्य परिस्थिति है वो किसी को भी विभ्रम पैदा हो गए वैसी नहीं है, इसलिए हम धर्म के क्षेत्र में कोई प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ते, वो प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ते थे। जो जिज्ञासु लोग इनके परिचय में आते थे उनको मार्गदर्शन दे देते थे। जिज्ञासु मैंने भावना वाले, तो उनका तुषातुर को पानी पिलाते थे। जिसको तृषा नहीं लगी हो उसके पास वो कभी धर्म की बातें नहीं करते थे। इस तरह से ये विभ्रम बुद्धि हो जाती है। विभ्रम बुद्धि होना मैंने अविश्वास होना, शंका होना, ऐसा हो जाता है।
जीव का बाह्य दृष्टि खत्म होना चाहिए। जीव का बाह्य दृष्टि खत्म हो तो परिणाम दिखेगा
नहीं, होना चाहिए
नहीं, होना चाहिए
अंतर्दृष्टि से अंतरंग की पहचान करना चाहिए। वो आखिर में लिखा है, वो आखिर में आएगी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए योग्यता चाहिए।
विपर्यास बुद्धि खत्म हो गया या नहीं हुआ? हाँ, इसका क्या टेस्ट है?
हाँ, इसका बात लिखा है कृपालु देव ने 674 में लिखा है कि ज्ञानी पुरुष की पहचान कब होती है। कि एक तो दृढ़ मुमुक्षुता उत्पन्न होती है तब। तो दृढ़ मुमुक्षुता किसको कहते हैं? कि जिसको एक मोक्ष के लिए ही प्रयास होता है, पूर्णता का लक्ष्य वाले को, नंबर एक। दूसरा, कि सत्संग में जो हमारे लायक जो भी हमें समझना सीखने का मिले उसका अमलीकरण करने का हमारा योग्यता, हमारी योग्यता उस स्टेज में आई हुई हो, तो उसको कुरबान जी ने इस शब्द में लिखा है कि सत्संग में प्राप्त उपदेश को अवधारण करने की योग्यता हो। अवधारण करना मैंने अमलीकरण करना। दो, तीसरे अंतरात्म वृत्ति होने पर। अंतरात्म वृत्ति माने क्या? कि खुद को ये अमलीकरण करके अंतर्मुख होने की बहुत भावना है, पर अंतर्मुख होने का उपाय, इलाज, मार्ग ढूंढता हूं। और ज्ञानी पुरुष से इस अंतर्मुख होने की का विषय उनको मिलता हो, मिल जाए, तो उसका इंटरलिंक बैठ जाता है कि ज्ञानी है, तब पहचान आती है। क्यों? कि ये अंतरात्म परिणति बिना, अंतर्मुख परिणति बिना ये अंतर्मुखता का विषय कोई चर्चा नहीं कर सकता, ऐसा विषय कोई बता नहीं सकता। वो खुद का अनुभव होगा तभी बता सकता है, क्योंकि ये अनुभव का वेदन का विषय है। तब से पता चल जाता है कि ये वेदन में आए हैं तो बताते हैं, पर बताते हैं तो वो अंतर्मुख हो, सुनने वाला भी अंतर्मुख हो सकता है, तो उसको बराबर तसल्ली हो जाती है कि ज्ञानी है। अज्ञानी के पास वो विषय नहीं है, कितना भी सूक्ष्म हो लेकिन अंतर्मुख होने की बात नहीं मिलेगी। ये एक विधि विषयक ऐसी चीज है, तो इसके प्रयोग में आए बिना इस विषय में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे सकते या इस विषय को खोल नहीं सकते। तो इसे इतनी सुनने वाले की तैयारी हो तब तो वो पहचान सकते हैं, इसके पहले पहचान करने की कोई परिस्थिति होती नहीं। परिस्थिति तो नहीं होती, लेकिन विपर्यास बुद्धि होने से विपरीत कल्पना होने का अवकाश बहुत है, ये बात हो जाती है।
ऐसा योग्यता के पहले भी ऐसा लगता है कि ये ज्ञानी पुरुष है, ऐसा योग्यता नहीं हुआ है जैसे आपने बताया, फिर भी ऐसा लगता है कि ये ज्ञानी पुरुष है और भक्ति भाव भी होता है, तो वो भी सही नहीं है।
सही नहीं, ओग संज्ञा से होता है, ऐसा होता है वो ओग संज्ञा से होता है, पहचान से नहीं होता है। संज्ञा में तो कभी भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसका आधार तो कोई है नहीं खुद के पास, या तो किसी के कहने से माना हो,
जैसे अंदर से ऐसा लगता हो,
या तो खुद को कुछ उलझन का मिटने का कोई स्पष्टीकरण मिला हो तो विश्वास आता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास पहचान नहीं है, वो भी उपसंज्ञा है। दो कारण बनता है, या तो दूसरे पुण्य योग से, कभी क्या होता है कि पुण्य योग से कहीं लोग ज्ञानी को ज्ञानी मानते हैं तो उस आधार पे मानने लग जाते हैं कि देखो हमारे से ज्यादा समझते हैं, वो भी मानते हैं, हमको भी मानना चाहिए, तो पीछे पीछे भी चल जाते हैं। बहुत भाग तो ऐसा होता है, कुछ एक को ऐसा होता है कि पर्सनल परिचय रहता है और खुद की कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार के जो उलझन के प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझते हैं, उस विषय में स्पष्टीकरण मिल जाता है तो विश्वास आता है कि लगता है यानी है, ऐसा लगता है। लेकिन वहां तक वो योग संज्ञा बनी रहती है, वो सच्ची पहचान नहीं है, वो विश्वास आने का थोड़ा बहुत कारण हुआ है, तो भक्ति वगैरह होता है लेकिन उसमें टिके नहीं, टिके कह नहीं सकते, ऐसी बात होती है। पहचान होने से तो परिणति में फेरफार हो ही जाएगा, लेकिन फिर तो भक्ति परमेश्वर बुद्धि से आएगी। फिर तो क्या है कि खुद को जो भक्ति आएगी वही परमेश्वर बुद्धि से आएगी, तो बहुत बड़ा बड़ा फर्क पड़ेगा।
परिणति में फेरफार नहीं हुआ इसका मतलब हमको पहचान ही नहीं है, हम होंगे
होंगे मान। वो तो बहुत बात ऐसा
अवश्य। आपने एक बार बहुत अच्छी बोली थी एक बार बांधनी में कि भावनगर में कि लोगों के कहने से अगर ज्ञानी को ज्ञानी माना है तो लोग बोलेंगे कि नहीं है तो नहीं मानेगा।
हाँ, वो तो जिस कारण से माना है उस कारण नहीं मिलेगा तो ऐसा ही हो जाएगा।
और आपने फिर इसके प्रतिपक्ष में एक बात और बोला था जिनको अपने अनुभव को मुख्य करके चलना चाहिए।
ये तो है, अपने अनुभव को तो देखना पड़ता है मुख्य बात। तो
अंतर्मुख होने की विधि समझ में आना ये पर्याप्त नहीं है, मतलब इसका खोज होना चाहिए कि ये हमको कैसे
नहीं समझ में आएगी। नहीं
आएगी नहीं,
ये दो अगला स्टेज आए बिना ये तीसरी बात होने वाली नहीं है। पूर्णता का लक्ष्य हुए बिना और प्राप्त उपदेश को अवधारण करने की तैयारी हुए बिना अंतरात्म वृत्ति आएगी नहीं, और अंतरात्म वृत्ति आएगी तब पहचान होने का परिणाम योग्यता आएगी। तो ये तीन प्रकार के परिणाम में इस परिणाम वाले की परिस्थिति में उनकी मिथ्यात्व रूप मिथ्या श्रद्धा है वो दर्शन में जिसको हम कहते हैं एकदम मंद होता है। दूसरा कि उसके ज्ञान में भी कुछ निर्मलता आती है, ये दो बात बनने से उनको पहचान आती है। तो पहचान वाले को क्या है कि ज्ञान की निर्मलता और मिथ्यात्व की मंदता होना जरूरी है तभी पहचान होती है, और वो उसी दर्जे की तब तो पहचान होती है। पहचान होने से परमेश्वर बुद्धि आए बिना रहती है। अथवा जीव से ज्ञानी पुरुष के प्रति यह चेष्टा का विकल्प आया करता है, ऐसे क्यों बोलते थे, ऐसे क्यों बात करते थे, ऐसे क्यों हंसते थे, ऐसे क्या ऐसे व्यवसाय क्यों करते थे, कोई भी न कोई न कोई जैसा भी जिसका उद्देश्य हो उस विषय में बार बार विकल्प आया करता है, मैंने अविश्वास रहा करता है तो विकल्प आता है। दूसरी और दूसरी बाजुओं से मैंने दूसरी ओर से यानी दूसरे पड़खों से ज्ञानी पुरुष का जो यथार्थ निश्चय हुआ हो तो कोई विकल्प को उत्पन्न करने वाली ऐसी ज्ञानी की उन्मत्त आदि भाव वाली चेष्टा प्रत्यक्ष भी देखने में आए तो भी दूसरी बाजू का निश्चय के बल के कारण से यह चेष्टा अविकल्पपणा को भजती है। अब क्या है अपन देने को एक बात और ले ली है कि दूसरी बाजुओं से मैंने अपनी जो चर्चा होगी उस तरह से ज्ञानी पुरुष का जो यथार्थ निश्चय हुआ हो मैंने पहचान यथार्थ हुई हो तो कोई विकल्प को उत्पन्न करने वाले ऐसे ज्ञानी की उन्मत्त आदि भाव वाली चेष्टा क्या है पागलपन। उन्मत्त माने क्या पागलपन, उन्मत्त में उन्मत्ति लिखा है
उन्मत्त आदि
हाँ उन्मत्त माने पागलपन, ऐसी कोई चेष्टा हो जाए तो भी जो निश्चय हुआ है उसमें शंका नहीं पड़ती। जैसे कुछ बीमारी बढ़ गई और बीमारी के साथ कुछ बोलना हो गया या बेशुद्धता लगे। तो ये विकल्प शंका नहीं पड़ती कि ऐसा क्यों होता है, या कोई दवाई लेते हो तो शंका पड़ती है भाई ऐसी दवाई क्यों लेते हैं, या कभी कोई गुस्सा कर लेते हैं ज्ञानी में। एक दृष्टांत दे कि आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ संयोगी कारण से ऐसे लगा कि आप दोषी थे, इसलिए आपका पर गुस्सा कर दिया। आपको ये लगेगा कि ज्ञानी है मुझे अन्याय कर रहे हैं, क्या लगेगा ज्ञानी ऐसा अन्याय क्यों करते हैं। दृष्टांत रामचंद्र जी का ले लें, सीता जी का कोई अपराध नहीं था फिर भी उसको जंगल में छोड़ दिया, तो कितनी कठोर इतना कठोर कदम उठाया था उन्होंने। एक ऐसा समय था कि वो सीता जी के पीछे रोते थे ज्ञानी होने के बावजूद भी, तो पत्नी का प्रतिबंध नहीं हुआ माँ क्या उसके पीछे रोने लग गए थे, जैसे बालक रोते हैं बच्चे रोते हैं वैसे सामान्य आदमी भी इतना नहीं रोए कभी, इतना रोए थे। तो उसमें उन्मत्त चेष्टा वो करते थे, तो वो पेड़ों को पूछते थे, पौधों को पूछते थे, पशु पक्षी को पूछते थे कि मेरी सीता को देखी क्या, इधर से चली क्या, इधर से चली थी क्या। तो उस तरह से वो पागलपन जैसी चेष्टा करते थे। वही रामचंद्र जी बिना कसूर सीता जी को भेज दिया जंगल में, वो भी सगर्भ अवस्था में पेट में बच्चा था। बात तो कोई मेल नहीं खाती है वैसी है, प्रत्यक्ष तौर से तो कोई मेल नहीं खाती है। आचार्यों ने कथा लिखी है, दूसरे कोई ने लिखी हो तो कोई उल्टी सुल्टी लिख दी होगी, लिखने वाले आचार्य हैं किसी कथा लिखी है, तो इसके पीछे आचार्य को एक अभिप्राय है कि ऐसा भी हो सकता है, फिर भी दूसरी ओर का निश्चय का बल होवे, दूसरी ओर का मैंने पहचान का निश्चय का बल होवे, तो ऐसी चेष्टा और विकल्पपना को फंसती है, उसमें विकल्प नहीं उठता कैसा क्यों, शंका नहीं अविश्वास पैदा नहीं होता है, ये अंदर की पहचान का कारण है। ऐसे अनेक प्रकार की विचित्र घटना संसार में बनती है, जैसे एक आदमी है उदार है बहुत, अपने सामने लाखों रुपयों का उसने दान दे दिया और कभी किसी को दो पांच रुपये में मना भी कर दिया हो, नहीं देंगे चले जाओ इधर से, तो जिसको दो पांच भी नहीं मिला वो बाहर जाकर के दूसरे को ऐसा बता सकता है कि मेरे अनुभव से तो ये बहुत लोभी आदमी था, कैसा था एक पांच रुपया के लिए भी मना कर दिया ऐसा, और गुस्से से ना बोल दिया ऐसा लोभी आदमी हमने तो देखा नहीं कोई, लोग नाम बड़ा बड़ा देते हैं इसका, लेकिन हमारा अनुभव बोलता है कि ये लोभी है, क्या बोलेगा वो, हमारा अनुभव बोलेगा कि ये लोभी है, अब क्या करना। तो जिसको मालूम है कि हमारे सामने लाखों रुपये दिए हैं वो मानेगा क्या, ये तुम्हारा अनुभव कुछ भी हो, हमको तुम्हारा अनुभव से लेना देना नहीं है, हमको हमारा अनुभव से लेना देना है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। ऐसे चित्र विचित्र परिस्थिति में उल्टी सुलटी समझ हो सकती है। खास करके ज्ञानी के विषय में जीव ने अनंत बार ऐसी भूल की है। तो कोई चर्चा चली हुई इस विषय पर, ये पत्र लिखा है किसको लिखा है मालूम है? त्रिभुवनदास माने थे खंभात के मुमुक्षु थे, त्रिभुवन भाई को पत्र लिखा है।
जिनको वो पैसा नहीं दिया
है,
जिनको वो पैसा नहीं दिया और वो जो निर्णय किया कि लोग ही हैं, उनका तो बात तो सही है एकदम 100%, इनका पैसा नहीं ला।
लेकिन वास्तविकता क्या है?
वास्तविकता
गलत फहमी होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? इसलिए ये निश्चय करना सामान्य मनुष्य के लिए भी कठिन बात है, तो ज्ञानी पुरुष के लिए कितनी कठिन बात होगी। हमारा तो ये अभिप्राय है दृष्टांत के पीछे कि सामान्य मनुष्य के लिए भी दो बात बनती है। आप बाजार में जाइए कि भाई ये लोग कैसे हैं, दो तरह का अभिप्राय मिलेगा। एक व्यापारी का दो तरह का अभिप्राय मिलेगा, कोई बोलेगा कि ऐसा है वैसा है, कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है। क्यों? किसी के कोई प्रसंग बना है, किसी के साथ कोई प्रसंग बना है, और दोनों का अनुभव उल्टा हो सकता है। तो सही निर्णय करना आसान नहीं है। देखो हम हमारे लड़के के लिए किसी लड़के को पसंद करते हैं कभी सगाई करना कि नहीं करना, हम क्या करते हैं इससे कुछ बातें कर लेते हैं, इनके परिवार वालों से बात कर लेते हैं, पूछताछ कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं आगे जा करके कि उनके सगे संबंधियों को पूछते हैं, फिर इनके पड़ोसियों को पूछते हैं, जितना भी अवकाश हो तलाश करने काम कर लेते हैं। तो क्या सही रिपोर्ट मिलता है हर जगह से? क्या इसमें कोई मिसगाइड होने का चांस नहीं है? क्या है कि नहीं है? कोई प्रेजुडाइस से अच्छे आदमी को बुरा भी बताएगा और कोई प्रेजुडाइस से बुरे को अच्छे भी बताएगा? ये कोई जरूरी नहीं है कि सच्चाई रिपोर्ट मिले, बनता है कि नहीं बनता है। तो पहचान तो बिना परिचय होती है, और खास करके ज्ञानी पुरुष के विषय में पहचान परिचय और योग्यता बिना होती नहीं। अकेला परिचय बाह्य दृष्टि का उसमें सफल नहीं होता। बाह्य दृष्टि तो बाह्य दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है वो अंतर्दृष्टि है, और अंतर्दृष्टि के लिए योग्यता चाहिए। इसका दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है।
योग्यता के लिए
तो अपनी मुमुक्षुता चाहिए, जैसे दृढ़ मुमुक्षुता, ये योग्यता का पहला चरण है, पूर्णता का लक्ष्य। उसके लिए क्या चाहिए? अंतकरण की शुद्धि। उसके लिए क्या चाहिए? तो परिभ्रमण की वेदना। जो जीव परिभ्रमण की वेदना में आता है उसमें एक काम तो जरूर हुआ है कि वो स्वलक्ष्य में तो परिपक्व रूप से परिणमन करने को तैयार हुआ है कि मेरा परिभ्रमण का क्या, इसकी चिंता उसको हुई। तो उसमें स्वलक्ष्य की दृढ़ता बहुत अच्छी तरह होती है, तभी वेदना आती है। अब थोड़ा विचार चला था कि बहुभागी मोक्ष को परिभ्रमण की वेदना नहीं आती, कुछ एक कोई आती है फिर उसकी लाइन आगे बढ़ती है। तो बहुभाव को नहीं आती है, इसके अनेक प्रकार के कारण है नहीं आने का, अनेक प्रकार के कारण है। उस अनेक प्रकार के कारण में मुख्य कारण जो कॉमन फैक्टर है सबों में, वो है कि अनात्मा की चिंता आत्मा की चिंता को पैदा नहीं होने देती, ये कॉमन फैक्टर है। अब अनात्मा की चिंता में कई प्रकार है, एक तो अपने संयोग की चिंता, अपने परिवार की चिंता, ये सब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, एक। दूसरा, ये अगर नहीं होता है किसी को, तो संयोग तो बहुत अच्छे हैं चिंता करने का, तो उनको को तो कारण, लेकिन परलक्ष रहा कर इतना बड़ा भयंकर जो सक्षम को पूरा का पूरा खा जाता है। जैसे कोई तप त्याग को अज्ञान खा जाता है, तप त्याग को कौन खा जाता है, अज्ञान खा जाता है, वैसे सत्संग को खाने वाला कौन है, परलक्ष है। परलक्ष से पूरा सत्संग निष्फल हो जाता है। और ये दोष में तीव्र कषाय दिखता नहीं, इस प्रकार के परिणमन में कषाय की तीव्रता नहीं दिखने में आती, तो पकड़ने में भी नहीं आता, क्योंकि ये ज्ञान का दोष है, ये राग का दोष नहीं है, चारित्र का दोष नहीं है, ज्ञान का और श्रद्धा का दोष है।
आत्मकल्याण माटे अप्रयोजनभूत वस्तु में रुचि आवे,
हाँ,
तो विविध वस्तु में रुचि आवे,
हाँ,
परलक्ष्य
परलक्ष का जितना भी प्रकार है, पर की चिंता, अनात्मा की चिंता होगी, वो सब मेरे लिए अनात्मा है, मैं किसकी चिंता करूं, किसकी पंचायत करूं, मेरे लिए तो सब अनात्मा है। ये अनात्मा की चिंता आत्मा की चिंता पैदा नहीं होने देगी, खा जाती। उसमें विपर्यास क्या है कि परिभ्रमण है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अनंत मृत्यु और चार गति का दुख का वहां की समस्या है वो। और ये जो बाकी का जो विषय है जो परलक्ष में आता है, या संयोग का या परिवार की दुखी बात है, ये तो इससे नीचे दर्जे की चिंता है। तो नीचे वाली चिंता ने, छोटी चिंता ने बड़ी चिंता को मार दिया, प्रयास हुआ कि नहीं हुआ। वास्तव में होना क्या चाहिए था कि बड़ी चिंता के वशात छोटी चिंता छूट जाए, ये होना चाहिए था, तो उल्टा हो गया। ये विपर्यास है, उसको बुद्धि विपर्य कहते हैं, तो बुद्धि की विपरीतता होगी। देखत बात है कि हम एक मृत्यु को भी इतना मुख्य कर देते हैं, मृत्यु के कारण को, कि सब काम छोड़ करके बचने का प्रयास कर लेते हैं, और अनंत मृत्यु के विषय में उदास रहते हैं या बेदरकार रहते हैं, दरकार नहीं करते। तो बुद्धि विपर्यास हो गया क्या, नहीं हुआ
एकदम।
इस तरह से अनादि काल से बुद्धि विपर्यास होने से सब बात विपरीत चलने लगती है, और जीव ने अनंत काल संसार में निकाला, मोक्ष मार्ग में आया ही नहीं, इसका यही कारण है। अथवा ज्ञानी पुरुष की चेष्टा का कोई अगम्य पणा ही ऐसा है कि अगली